ये आकाशवाणी दिल्ली है। पावर परचेस एग्रीमेंट चार्ज में हुई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मुलाकात की। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि शहर में पेट्रोल पंप के अलावा लगभग 300 स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एनडीएमसी ने छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी मैराथन का आयोजन किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने मुहर्रम जुलूस को ध्यान में रखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। पावर परचेस एग्रीमेंट चार्ज पीपीएसी में हुई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से आज मुलाकात कर आगामी विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा की मांग की। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों से साठगांठ की है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को अत्यधिक पीपीएसी देना पड़ेगा। भाजपा ने कहा कि 200 यूनिट से अधिक के बिल वाले साधारण उपभोक्ताओं के बिल का आधे से अधिक हिस्सा पीपीएसी आदि सरचार्ज का होता है। इसके अतिरिक्त भाजपा विधायकों ने पेंशन सरचार्ज और बिजली एवं पानी की कटौती पर भी विधानसभा सत्र में चर्चा की मांग की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस मादक पदार्थ निषेध अधिसूचना केंद्र का शुभारंभ और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। बैठक का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। गृह मंत्रालय ने कहा कि संस्थागत ढांचे को मजबूत करके तथा सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति को अपनाकर वर्ष 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई यात्रियों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने देश में नागरिक उड्डयन के मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विमानन क्षेत्र के लिए हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश पर जोर दिया। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन इस वर्ष 11 और 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। सम्मेलन के दौरान प्रमुख विमानन संगठन, विमानन नेता और अन्य हितधारक नागरिक विमानन क्षेत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में पेट्रोल पंप के अलावा लगभग 300 स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। श्री गहलोत ने यह जानकारी शहर में पेट्रोल पंप पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्रों की हड़ताल से हो रही लोगों को समस्या को ध्यान में रखते हुए साझा की है। इन सभी प्रदूषण जांच केंद्रों की सूची परिवहन विभाग दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने आज राजधानी के तिलक मार्ग स्थित हरकोट बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अटल आदर्श विद्यालय के छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्रों को अलग अलग अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध और वेक्टर जनित बीमारियों से खुद को बचाने के लिए जागरूक करना था। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर दिल्ली के डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, आरएमएल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के साझा प्रयास से एक प्लास्टिक सर्जरी मैराथन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
इस प्लास्टिक सर्जरी मैराथन में 17 डॉक्टरों की टीम ने लगातार 24 घंटे तक प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन किए। इस दौरान 2 वर्ष से लेकर 58 वर्ष की आयु वर्ग तक के 24 मरीजों के सफल ऑपरेशन किए गए। आरएमएल अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि ये प्लास्टिक मैराथन अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक सर्जरी और उससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना था।
बहुत ही यूनिक सर्जरी का मैराथन किया है, जिसमें कि 24 घंटे में 24 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। और हमारे यहाँ एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक भी चालू की गई थी, जिसमें जितने ट्रांसजेंडर पेशेंट्स की मुश्किलें हैं उसको एक मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के थ्रू उनको ठीक किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का मैराथन का मोटिव था लोगों में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अवेयरनेस दिलाना।
अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर समिक भट्टाचार्य ने लोगों को सलाह दी कि वर्तमान में काफी अयोग्य डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि लोग सर्जरी कराने से पहले प्लास्टिक सर्जन के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करें।
प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है और ये एक सोच पे बेस्ड है कि कहीं भी कोई विकृति है या कोई डिफेक्ट है उसका कवर करना या उसको रिकंस्ट्रक्ट करना हमारा काम। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे एरियाज है जो दूसरे स्पेशलिटी से भी ओवरलैप कर जाते हैं। एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन लोगों में होता है बिकॉज ऑफ द मूवीज में दिखाएंगे कि शक्ल बदल दिया, पूरा कोई स्कार नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी भी एक नॉर्मल ऑपरेशन की तरह ही होता है, उसमें टांके भी लगते हैं, मगर हम लोग जैसे टांके लगाते हैं उसमें दाग बहुत कम आते हैं।
प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी दिल्ली से आदर्श।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी मामले में 4 प्रमुख आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एक रिपोर्ट।
एनआईए ने अपनी जांच के दौरान पता लगाया कि ये आरोपी एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा थे, जो युवाओं को विदेशों में आकर्षक नौकरियों का झांसा देते थे। तस्करी के शिकार युवाओं को फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो कि भारत, लाओस और अन्य देशों में स्थित ऑपरेटरों के माध्यम से विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित किए जा रहे विशाल नेटवर्क का हिस्सा थे। इन कॉल सेंटरों के माध्यम से युवाओं को निवेश घोटाले, क्रिप्टो मुद्रा घोटाले आदि जैसी अवैध ऑनलाइन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जाता था। घटना में गिरफ्तार 4 आरोपी दिल्ली, हरियाणा और बिहार से हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए कहा गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने मुहर्रम ताजिया जुलूस को ध्यान में रखते हुए आज और कल शहर के कुछ मार्गों के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम और अन्य सिटी बसें आरामबाग तक ही जा पाएंगी। वहीं कनॉट प्लेस और केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसें रानी झांसी रोड, मंदिर मार्ग, पार्क स्ट्रीट से उद्यान मार्ग तक जाएंगी। स्टेशन जाने वाले यात्रियों को यातायात विभाग ने कल शाम में समय से पहले निकलने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पहुंचने के लिए यात्रियों को कनॉट प्लेस से बचने और तिलक मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग या राजघाट और जवाहरलाल नेहरू मार्ग के माध्यम से अजमेरी गेट की ओर पहुंचने के लिए कहा है। दिल्ली में कल सड़क मार्ग का प्रयोग करने से पहले लोग दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट और उनके सोशल मीडिया से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होटल में अतिथियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने होटल मालिकों के लिए सूचना पुस्तिका जारी की है। इसका उद्देश्य दिल्ली में सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। इसे होटल और लॉजिंग हाउस संचालकों को उनके प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और बनाए रखने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त ये पुस्तिका व्यवसाय करने में आसानी और शहर को सुरक्षित रखने के लिए दिशा निर्देशों के बेहतर अनुपालन के लिए सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और होटल मालिकों को शहर की सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। पावर परचेस एग्रीमेंट जांच में हुई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मुलाकात की। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि शहर में पेट्रोल पंप के अलावा लगभग 300 स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एनडीएमसी ने छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर दिल्ली में प्लास्टिक सर्जरी मैराथन का आयोजन किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने मोहर्रम जुलूस को ध्यान में रखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने वाले अपने 3 जनवरी को दिए गए निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।
3 जनवरी को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड सेबी से जांच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शोध रहित और असत्यापित सामग्री के आधार पर दायर की गई जनहित याचिकाएं प्रतिकूल परिणाम देती हैं। शीर्ष अदालत ने सेबी और केंद्र सरकार की अन्य जांच एजेंसियों से शॉर्ट सेलिंग के आरोपों की जांच करने को कहा था। शॉर्ट सेलिंग से निवेशकों को नुकसान हुआ था। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने आज विभाग के प्रमुख अध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ राजधानी के बड़ौदा हाउस में उत्तर रेलवे की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उत्तर रेलवे ने कहा कि संरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है, जिसके लिए ट्रैक, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के कारण उत्पन्न होने वाले रेल यातायात में व्यवधान पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान श्री चौधरी ने बेहतर कुप्रबंधन और मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने ट्रेनों की समयबद्धता का बेहतर रिकॉर्ड बनाए रखने और गतिशीलता बढ़ाने से संबंधित कार्यों में तेजी लाने तथा प्रगति की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों के 1,500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को 24 घंटे के अंदर सहायता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति के नुकसान सहित फसल या हानि या बाढ़ क्षति से प्रभावित लोगों को तुरंत वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। राजधानी के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई तथा दिनभर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पावर परचेज एग्रीमेंट चार्ज में हुई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से मुलाकात की। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा कि शहर में पेट्रोल पंप के अलावा लगभग 300 स्थानों पर दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एनडीएमसी ने छात्रों के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पर दिल्ली प्लास्टिक सर्जरी मैराथन का आयोजन किया गया।